بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات۔ ناظرین، سینٹر فار اسٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ جنیوا معاہدے کے تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے مدد اور تعاون لازمی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز CSIS نے 24 نومبر کو ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کو ایران کے ساتھ ہونے والا بہترین سمجھوتا قرار دیا ہے۔ CSIS کی ویب سائٹ پر ایران کے ساتھ ہونے والا بہترین سمجھوتا کے عنوان سے شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق ایران اور گروپ 5+1 نے جس سمجھوتے پر اتفاق کیا ہے وہ انتہائی غور طلب ہے، اس لیے کہ اس سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے امریکہ اور گروپ 5+1 کو متوازن اقدامات کرنا ہوں گے۔ عالمی ذرائع ابلاغ اور تجزیہ نگار حضرات مختلف زاویوں سے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ CSIS نے اس سمجھوتے پر ایک اور زاویے سے نگاہ ڈالی ہے اور 5+1 گروپ کے درمیان پائے جانے والے نظریاتی اختلافات کا جائزہ لیا ہے۔ جنیوا معاہدے میں جو بات سرحد کے ساتھ بیان کی گئی ہے اس میں کئی اہم معاملات ہیں، جن میں سے ایک وہ اقدامات ہیں جو ایران جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت ایجنسی کی جانب سے اٹھائے جانے والے سوالات کے جوابات اور شبہات دور کرنے کے لیے انجام دے رہا ہے اور اس کی رپورٹ ویریفیکیشن کے عنوان سے 5+1 گروپ کو پیش کرے گا۔ یہی رپورٹ جنیوا سمجھوتے کے مطابق فریق مقابل کے لیے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کی بنیاد فراہم کرے گی، جس میں پابندیوں کا بتدریج خاتمہ، ایران کے منجمد شدہ اثاثوں کی بحالی اور ششماہی جنیوا سمجھوتے پر عمل درآمد کے دوران ایران کے خلاف نئی پابندیوں سے گریز کرنا شامل ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے جنیوا سمجھوتا ایک دائمی سمجھوتے تک رسائی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران بھی جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے قوانین کی پابندی کرتا آ رہا ہے اور IAEA کی نگرانی میں ایٹمی بجلی گھر کی ضرورت کے مطابق یورینیم کی افزودگی کا عمل اندرون ملک انجام دے رہا ہے۔ اس سمجھوتے کی روح سے ایران نے رضاکارانہ طور پر اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ مزید اعتماد کی بحالی کے لیے یورینیم کی افزودگی 5% ہی انجام دے گا اور 20% تک افزودہ شدہ یورینیم کے ذخیرے کو ایٹمی فیول راڈ میں تبدیل اور نئی قسم کی سینٹریفیوج مشینیں نصب نہیں کرے گا۔ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے پرامن ہونے کی تصدیق کے لیے ایجنسی کا طریقہ کار بھی واضح ہے، جس میں سے ایک ایٹمی تنصیبات کا معائنہ بھی ہے۔ حال ہی میں IAEA کے معائنہ کاروں نے عراق کی ہیوی واٹر تنصیبات کا معائنہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرائن و شواہد سے سمر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں مذاکرات سخت مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اور حاصل شدہ موقع سے زیادہ توقعات نہیں رکھی جانی چاہیے، کیونکہ ایران اور گروپ 5+1 کے سمجھوتے سے متعلق بہت سے مسائل باقی رہ گئے ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ لیکن آخری مقصد ایک جامع سمجھوتے تک پہنچنا ہے۔ اس بنا پر ایران کی مذاکراتی ٹیم عزت، حکمت اور مصلحت کے تین اصولوں پر تاکید اور دقت نظر کے ساتھ اس کوشش میں ہے کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنائے۔ امریکہ نے جنیوا سمجھوتے کے حوالے سے دوہرا رویہ اپنا رکھا ہے اور وہ جنیوا سمجھوتے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، اسی لیے ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کیے جانے سے مغرب کے ساتھ ایٹمی مذاکرات رک سکتے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ اعتماد کی بحالی کے لیے مشترکہ اقدامات دو جہت کے حامل ہیں، لیکن مقصد ایک ہے۔ اگر جنیوا سمجھوتے پر مکمل طور سے عمل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں خطرات برطرف ہو جائیں گے اور ایک جامع تعاون کا موقع حاصل ہو سکتا ہے۔
ناظرین، امریکہ میں جب لوگ کرسمس کی چھٹیاں منا رہے ہیں، 13 لاکھ لوگوں کے ہنگامی بے روزگاری بیمے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے سال نو کا جشن تلخیوں سے مل گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ایک ایسے وقت میں جب امریکی عوام کی ایک بڑی تعداد نئے سال اور کرسمس کا جشن منا رہی ہے، 13 لاکھ امریکیوں کا ہنگامی بے روزگاری الاؤنس ختم کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد سے بے روزگاری الاؤنس پر گزارا کرنے والے کئی لاکھ امریکی خاندانوں کو سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب کچھ عرصہ قبل تقریباً 50 لاکھ امریکی شہریوں کے غذائی کوپن بھی بند کر دیے گئے تھے اور اوباما کیئر کے منظور نہ ہونے سے میڈیکل انشورنس نہ رکھنے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بہرحال سال 2013 ختم ہونے میں اب چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سال امریکہ کے غریب اور کم آمدنی والے افراد کے لیے بہت ہی سخت سال تھا، جبکہ پارٹیوں کی مہازارائی اور حکومت کی آمدنی میں شدید کمی کی وجہ سے امریکی فیڈرل حکومت کی سرگرمیاں 16 روز تک بند رہیں، جس کے باعث امریکہ کی ساکھ اور معیشت کو سنگین نقصان پہنچا اور امریکی حکام مالی بچت اور عمومی اخراجات کم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سلسلے میں امریکی کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹی کے پارلیمانی سربراہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بعض عمومی اخراجات کو کم کریں گے تاکہ 2014 میں فیڈرل حکومت کے دوبارہ شٹ ڈاؤن کے امکان کو روکا جائے۔ اس بنا پر دونوں فریقوں نے اتفاق کیا ہے کہ بے روزگاری الاؤنس کے بجٹ میں کمی کریں، جس کے نتیجے میں امریکہ کے 13 لاکھ افراد کا بے روزگاری الاؤنس ختم ہو جائے گا۔ اس وقت حکومت امریکہ کو اپنے فلاحی پروگراموں پر عمل درآمد اور غریبوں اور ضرورت مند افراد کے سلسلے میں اپنے وعدوں پر عمل کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو فیڈرل حکومت کا خزانہ تقریباً خالی ہے اور حکومت کو ملکی اور غیر ملکی مالیاتی ذرائع سے قرض حاصل کر کے اپنے عمومی اخراجات کو پورا کرنا پڑے گا، جبکہ دوسری طرف ریپبلکن ارکان کے جن کا کانگریس پر کنٹرول ہے اخراجات کو کم کرنے اور بچت کے لیے وائٹ ہاؤس پر مسلسل دباؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ امریکی کنزرویٹو کی نظر میں طویل المدت بے روزگاری الاؤنس دینے سے لوگوں میں کام نہ کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے اور ٹیکس دہندگان کا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ریپبلکن ارکان نے 2013 میں کہ جب حکومت کا مالی بحران اپنے عروج پر تھا، بے روزگاری الاؤنس اور غذائی کوپن جیسے بعض فلاحی پروگراموں کا بجٹ ختم یا کم کرنے پر زیادہ زور دیا۔ ڈیموکریٹ ارکان نے ریپبلکن کے ساتھ بجٹ کے سلسلے میں مساہلت تک پہنچنے کے لیے فلاحی پروگراموں کے بجٹ میں کٹوتی کی تجویز قبول کر لی۔ البتہ ڈیموکریٹس کو امید ہے کہ وہ ریپبلکن ارکان کو اس سلسلے میں قصوروار ٹھہرا کر آئندہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کانگریس پر حریف پارٹی کا کنٹرول۔ بہرحال وجوہات چاہے جو بھی ہوں، امریکہ کے غریب اور نادار افراد نے 2013 کا کرسمس بری خبروں کے ساتھ شروع کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہر سال ان دنوں میں نئے سال کی خریداری کی لہر شروع ہو جاتی ہے اور دولت مند اور متوسط طبقہ اپنی ضروری اور غیر ضروری چیزوں کی خریداری پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، جبکہ غریب اور نچلے طبقے کے افراد کو بہت سوچ سمجھ کر خریداری کرنا ہوگی، کیونکہ اب انہیں حکومت کی طرف سے جو امداد ملتی تھی وہ نہیں ملے گی۔
ناظرین، دہلی میں عام آدمی پارٹی نے حکومت سازی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حکومت کے سامنے متعدد چیلنج ہوں گے اور اسے بہت ہی محنت اور دور اندیشی کے ساتھ ان چیلنجوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار قمر آغا کا تبصرہ۔
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت نئی چیز ہوئی ہے، پہلی بار ایسی ہوئی ہے کہ ایک چند لوگوں نے ایک پارٹی بنائی اور اس کو اس طریقے سے الیکشن جیت کے آیا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ ملک اور خاص طور سے اس علاقے میں لوگوں کی جو رائے ہے وہ بالکل بدل گئی ہے، اور وہ نہ تو کانگریس کو چاہتے ہیں اور نہ ہی بی جے پی کو چاہتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں ایک نئے قسم کی حکومت آئے۔ دیکھیے، پچھلے کافی دنوں سے کرپشن بہت بڑھ گیا، پھر اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ بھی نہیں ٹھیک سے چل رہا تھا، اور اس کے چلتے ہوئے لوگوں کو بہت دشواریاں آ رہی تھیں۔ جب گورنمنٹ ہی ٹھیک سے نہیں چل رہی تھی، یو پی حالانکہ 2 بار جیتی ہے الیکشن، لیکن اس دفعے وہ اس کا پرفارمنس اچھی نہیں رہی۔ آج لوگ چاہتے ہیں، یہ خاص طور سے ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کی تھنکنگ بالکل الگ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ملک کے اندر انفراسٹرکچر بنے ٹھیک، اعلیٰ درجے کا، کرپشن بند ہو، نوکریاں، جابس ہو۔ یہ لوگ جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بہت دنوں سے وعدے تو بہت کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ ڈلیور نہیں کر پائے، پہنچا نہیں پائے عام جنتا کو۔ اور یہی نہیں بلکہ ہندوستان کی اکنامی بھی جو اس طریقے سے بڑھ رہی تھی وہ بھی स्लो डाउन हो गई, उसमें भी कमी आ गई, जीडीपी 5% ग्रोथ हो गई 8 और 9 से लेके, तो ये सारी चीजें थी। और फिर इसके अलावा जो दूसरे उसके रोजमर्रा के जो मसाइल हैं उनको भी हल करने में ये नाकामयाब रहे कहीं नहीं, तभी मैं समझता हूँ इतनी बड़ी तादाद में उनको सीटें मिली, जबकि उनके पास ना ठीक से कैंडिडेट थे, न लोग उन कैंडिडेट के बारे में जानते थे, न लोग उनके पार्टी का कोई खास मैनिफेस्टो जानते थे। उसके बावजूद ये एक नया चेंज आने वाला है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल पार्टीज हैं अगर इसको नहीं समझी तो आने वक्त में इनको मैं समझता हूँ बहुत दुश्वारियाँ उठानी पड़ेंगी, बल्कि इनका रिवाइवल भी मुश्किल हो जाएगा।
नाज़रीन, रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सन 2013 में मॉस्को वाशिंगटन ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार रहे। मुलाहिज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि सन 2013 के दौरान मॉस्को और वाशिंगटन के ताल्लुकात इंतहाई सर्दमहरी का शिकार रहे हैं। सरगेई रियाबकोव ने रेडियो सदाए रूस से बातचीत करते हुए कहा कि 2013 के दौरान मॉस्को वाशिंगटन ताल्लुकात में अमली तौर से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उन्होंने वाजे किया कि माहदे शिमाली उकयानूस नेटो की मिसाइल शील्ड का मामला हो या CIA के साबिक अहलकार एडवर्ड स्नोडन के मामले पर पाई जाने वाली कशीदगी या बाज रूसी शहरियों के खिलाफ अमरीका की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियां, ये सब ऐसे मामलात हैं जिनके रूस अमरीका ताल्लुकात पर गहरे असरात पड़े हैं। सरगेई रियाबकोव ने मजीद कहा कि रूस इस बात की कोशिश करता रहा है कि इन मामलात को हवा देने से गुरेज करे और मुतवाजन रद्दअमल जाहिर किया जाए। अमरीका रूस ताल्लुकात माजी में भी मुतअद्दिद नशेब व फराज से दो चार रहे हैं और दोनों मुल्कों के बाज़ अहदेदारों की कोशिशों के बावजूद बाहमी ताल्लुकात में पाए जाने वाले तलातुम को कम नहीं किया जा सका है। अमरीका और सोवियत यूनियन दूसरी आलमी जंग से पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन दूसरी आलमी जंग के दौरान अपने मुश्तरका दुश्मन यानी जर्मनी की वजह से एक दूसरे के साथ करीबी तआवुन पर मजबूर हो गए। 1945 में दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद मुत्तहिदीन और मुत्तफिकीन के दरमियान जंग भी अमली तौर पर ख़त्म हो गई और इसके नतीजे में वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान माजी में पाए जाने वाले इख्तलाफात ने एक बार फिर सर उभारना शुरू किया, जिसके बाद अमरीका और रूस ने दो मुतजाद सियासी और इकतसादी नज़रियात को अपनाते हुए आलमी सतह पर अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए भरपूर तगोदौ शुरू कर दी। ये बात दोनों मुल्कों के दरमियान तवील इकतसादी और नजरियाती कश्मकश में तब्दील हो गई और सन 1947 से 1991 में सोवियत यूनियन के जवाल तक जारी रही, जिसे सर्द जंग का नाम दिया जाता है। सर्द जंग के दौरान मॉस्को वाशिंगटन दो ऐसी सुपर ताकत कहलाते थे जिनका दावा था कि हयात इंसानी के लिए उनके पास नजरियात सबसे बेहतरीन हैं। लेकिन 80 की दहाई में सोवियत यूनियन के जवाल के बाद रूस की माशी हालत के पेश नज़र उस वक्त के रूसी हुक्मरानों को अपने दावों से पसपाई इख्तियार करते हुए तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अमरीका के साथ सियासी ताल्लुकात और तआवुन का रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद साबिक सोवियत यूनियन से आज़ाद होने वाले ममालिक के हवाले से रूस और अमरीका के दरमियान कशीदगी 90 की दहाई तक पूरी तरह बरकरार रही। व्लादिमीर पुतिन के बरसर इक्तदार आने के बाद रूस अमरीका ताल्लुकात में पाए जाने वाली कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। इस वक्त ये ख्याल आम है कि रूसी सदर की हैसियत से व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर साबिक सोवियत यूनियन वाली आलमी ताकत बनने का ख्वाब देख रहे हैं। रूस की मगरबी सरहदों के करीब नेटो की मिसाइल शील्ड की तंसीब, शाम का बहरान, रूस की सरहदों तक नेटो के फैलाव, वस्ती एशिया के तेल और गैस के जखायर तक रसाई के लिए अमरीकी कोशिशें, जमहूरियत की तरक्की के नाम पर रूस के अंदर अमरीका के मुदाखलत पसंदाना इकदाम, मैग्नेट्स्की लॉ और साबिक CIA एहलकार एडवर्ड स्नोडन के नाम से पेश आने वाली मुश्किलात तो महज मॉस्को वाशिंगटन इख्तलाफात के चीदा चीदा नमूने हैं। दरहकीकत अमरीकी और रूसी मफादात के इर्तका की सम्त एक नहीं है और उनके दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात में पैदा होने वाली शिद्दत के पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि मॉस्को वाशिंगटन ताल्लुकात में आइस एज का आगाज हो गया है।
और नाज़रीन, अब गजा पर इसराइल की जारहियत। इसराइल ने हालिया कुछ दिनों के दौरान गजा पर अपनी जारहियत तेज़ कर दी है, जिसकी वजह से एक अरसे से महसूर इलाके में ज़िंदगी गुजारने वाले गजा के आवाम मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। एक बड़ा इलाका बिजली से महरूम है और अंधेरों में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि सर्दी का मौसम है और सख्त सर्दी पड़ रही है। बिजली इसलिए नहीं है कि ईंधन नहीं पहुंच पा रहा है कि जिससे गज़ा के इलाके में बिजली बन सके और सप्लाई की जा सके। इस बीच गज़ा पर वसी पैमाने पर इसराइल की जानिब से हमला ख़ास वक्त और ख़ास मकसद के तहत शुरू किया गया है। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर जनाब अहमद मुस्तफ़ा जैदी साहब को, और नई दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ होंगे डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब। गुफ्तगू का आगाज़ हम जैदी साहब से करते हैं। गज़ा पर इस वक्त इसराइल के जो हमले हो रहे हैं, गज़ा के अवाम महसूर हैं और मिस्र से रफा का जो इलाका मिलता है उसकी जो टनल्स हैं वो भी पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं और गज़ा के अवाम वाकई बुरी तरह से महसूर हैं। ऐसे में हमलों में ये शिद्दत, आपका क्या तबसरा है इस पर?
देखिए, पहली बार तो हुआ नहीं है ये, इससे पहले भी बार बारहा इस टाइप की चीज़ें हो चुकी हैं कि गज़ा को, मैं समझता हूँ कि 5-6 साल हो चुके हैं कि इनको बुरी तरह से मुहासरे में इन्होंने लिया हुआ है। अब कभी इसमें ज़्यादा सख्ती हो जाती है और कभी थोड़ी सी वो छूट दे देते हैं जब वो थोड़ा सा रहम खाना चाहते हैं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि सर्दी का ज़माना है, पहले भी 6-6 घंटे सिर्फ, यानी 24 घंटे में 6 घंटे सिर्फ बिजली आती थी और माफ़ कीजिएगा, और अब सूरत हाल यह है कि आज से वहाँ की इलेक्ट्रिक सप्लाई ने ऐलान कर दिया है कि वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पैदावार नहीं कर सकते। उसकी वजह वही है जैसा कि आपने बताया कि ईंधन जो है वो वहाँ पहुँच ही नहीं रहा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अस्पतालों में लोग जो हैं वो बाज़ मशीनें ऐसी हैं जिसमें ज़रूरत है कि बिजली से वो चलें, और बहुत से मरीज़ जो हैं उनकी ज़िंदगी का दारोमदार उस पर है, वो सब इस वक्त बंद हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो गालिबन मौत का शिकार हो जाएंगे इसकी वजह से। और इधर आलम यह है कि पड़ोस में जितने मुसलमान ममालिक हैं वो मुजरमाना तौर पर या तो खामोश हैं या इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, उनमें मिस्र जो है वो सबसे आगे है। हुस्नी मुबारक के ज़माने में भी यही हुआ था कि वहाँ पर वो जो टनल्स थी उनको आखिरी दौर में उसने बंद करवा दिया था। बाद में मोहम्मद मुरसी के दौर में बहुत ही महदूद पैमाने पर जो है वो खोली गई थी और फिर बंद हुई। और उसके अलावा जॉर्डन है, ये लोग, यानी ये जॉर्डन से तो खैर इनका गज़ा पट्टी जो है वो मिलती नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल ये लोग यहाँ से मदद कर सकते हैं, सऊदी अरब है ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये लोग सब मुजरमाना तौर पर या तो वाज़ह तौर पर बिल्कुल खुले हुए अंदाज में या ढके छुपे अंदाज में इसराइल की हिमायत कर रहे हैं
जी।
और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है आलम इस्लाम के लिए पूरे तौर पर। दूसरी तरफ जो है वो दहशतगर्द जो हैं वो दूसरी जगहों पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लबनान में आप देखिए, वहाँ जो एक पड़ोसी मुल्क है इसराइल का, वहाँ जो है वो क्या सूरत हाल आज पैदा की गई है। और ये लोग भी, मैं समझता हूँ कि ये तो खुली हुई एक साजिश है जिसमें बदबख्ती से मुसलमान ममालिक जो हैं वो पूरे पूरे शामिल हैं इसमें
जी। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, इसराइल गज़ा पर जारहियत कर रहा है, इसराइल से इसके अलावा कोई तवक्को नहीं है, लेकिन जैसा कि जैदी साहब ने इशारा किया, जो ममालिक इस्लामी ममालिक कहे जाते हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब या दीगर ममालिक, उनकी तरफ से कोई मदद न होना गज़ा के अवाम की, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर आपका तबसरा?
इस तबसरे से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सूरत हाल गज़ा में पैदा हुई है ये आज से नहीं है। 2007 में इसराइल ने गज़ा पर ब्लॉकेट शुरू किया था और उसके बाद वक्तन फवक्तन मुस्तकिल इस किस्म के हमले उस पर होते रहे हैं, और खास तरीके से 2008 में तकरीबन इन्हीं दिनों, आज ही कल के दिनों में, 2008 में इन्होंने बाकायदा बहुत बड़ा हमला किया जो कि 21 दिन तक चला, जिसमें 1400 लोग मारे गए, जिसमें 53,000 लोग जख्मी हुए और बेशुमार घर और स्कूल और इस तरह के रिफ्यूजी कैंप वगैरह तबाह हुए। तो वो ये सिलसिला मुस्तकिल चलता रहा है, और अभी जो फिलहाल जो कैफियत पैदा हुई वो भी इसराइल की वजह से हुई है, क्योंकि पिछले इतवार को इसराइली जो फौजी जो सरहद के उस पार है उन्होंने गोली मार करके एक फलस्तीनी को शहीद कर दिया। उसके बाद फलस्तीनियों ने एक इसराइली को इसी तरह से सरहद के इस पार से गोली मारकर शहीद कर दिया। उसके बाद इसराइली हवाई जहाज़ों ने और टैंकों ने और तोपों ने मुस्तकिल गजा पर बमबारी की है, जिसमें कि एक बच्ची 3 साल की शहीद हुई है और उसके अलावा बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। असल में उसकी वजह यह है कि इसराइल चाहता है कोई ना कोई बहाना बना करके गजा पर हमला करे और गजा पर कब्जा करे और गजा में जो हमास की हुकूमत है उसको खत्म कर दे, और इसके लिए महीनों से, बल्कि मैं समझता हूँ महीनों नहीं बल्कि बरसों से ये तैयारी चल रही है। लेकिन जो चीज़ उनको रोके हुए है वो यह है कि गजा में जो सूरत हाल है वो बहुत ही बदल चुकी है। गजा में जो फौजी जो तैयारियां हैं वो बहुत ही आला पैमाने की हैं। गजा में जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर के जो टनल हैं वो अंदर बना दिए गए हैं, जो कि फौजी नौइयत के हैं, और ये सब इसराइल को मालूम है कि वहां पर मुजाहमत बहुत ही शदीद होगी। अब आपने ये सवाल किया है कि मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक इस सिलसिले में खामोश क्यों हैं, बल्कि असल बात ही खामोश नहीं है, बल्कि इस साजिश में जो इसराइल कर रहा है पूरी तरह से शरीक है, पूरी तरह से। सिर्फ इनको एक साल सदर मुर्सी के जमाने में इनको जरा से राहत मिली थी, और उसकी सजा सदर मुर्सी इस वक्त भुगत रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा है, और ये कि हमास से उन्होंने बात की थी, जो कि नए जो फौज में फौजी हाकिम इस मिस्र में है, उनका ये कहना है कि ये जो उन्होंने बातचीत की ये हमास के लीडरान से, ये एक तरह से दुश्मन से बात करना था या एक दहशतगर्द तंजीम से बात करना था, इस वजह से वो जो है उसके मुजरिम है, और यहां तक कहा जा रहा है कि इसकी सजा उनको मौत की भी दी जा सकती है। तो ये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये सारे ममालिक जो आस पास के हैं, जिसमें आज का मिस्र है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें उर्दुन है, ये सब ममालिक जो है इस साजिश में पूरी तरह से शरीक है, और इसी वक्त हम ये देखते हैं कि यही ममालिक इसराइल के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ भी साजिश में शरीक हैं। तो ये सब ममालिक जो है हकीकत में मिल्लत के जो मफादात हैं, जो आला तरीन मफादात हैं, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और सिर्फ इनके अपने जो छोटे छोटे मफाद हैं उसके लिए वो मिल्लत के बड़े मफादात को कुर्बान कर रहे हैं, जिसमें कि फलस्तीन का मसला भी। अगर फलस्तीन के बारे में ये लोग सही माने में संजीदा होते तो आज फलस्तीन का मसला ही नहीं होता। सन 48 से लेकर के सन 67 से लेकर के और आज तक जो भी वाकयात हुए हैं, इसमें इन लोगों ने सर्द महरी का मुजाहरा किया है, अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। इसराइल पर जो जोर लग रहा था बायकॉट वगैरह का, वो भी इन लोगों ने एक तरफा तरीके से खत्म कर दिया, जबकि इसराइल ने कोई मसला नहीं हल किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये लोग इसराइल को बनाने में, इसराइल को ताकतवर करने में और फलस्तीनियों को कमजोर करने में पूरी तरह से शरीक है।
जी जैदी साहब, ये बड़ा अहम नुकता है कि अरब ममालिक इनकी जो जंगें हुई, दो जंगें इसराइल के साथ हुई, जाहिर इसमें इनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके बाद से हम ये देखते हैं कि इन्होंने इसराइल के सिलसिले में एकदम माजरत खाना रवैया रखा, मुफाहमत और आश्ती का रवैया रखा खुफिया तौर पर, फिर दोस्ताना ताल्लुकात पे, और दोस्ताना ताल्लुकात भी अब स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नौयत के हो गए हैं। तो इस तरह की हम सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि इन्होंने इससे पहले भी ये किया कि मसले फ़िलिस्तीन, ज़ाहिर है कैंप डेविड का माहदा इसी ज़िम्न में आएगा, कि इन्होंने मसले फ़िलिस्तीन को किसी ऐसे अंदाज हल करने की कोशिश की कि जो पूरी तरह से इसराइल के फ़ायदे में हो। लेकिन इन्हीं कोशिशों और इन्हीं हालात में हम देखते हैं कि हमास जैसी तंजीमें उभर के सामने आती हैं। ज़ाहिर है PLO से लोगों का एतमाद ख़त्म हुआ, कम हुआ, और लोगों ने मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने देखा कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है और अब तक के मिशन को ये पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा, तो उन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार किया। चुनांचे हमास हमारे सामने है और भी तंजीम हमारे सामने हैं जो मुजाहमत का रास्ता अख्तियार कर रही हैं। एक बार हम फिर देख रहे हैं कि वही साजिशें हैं, अरब ममालिक हैं जो इसराइल के साथ मिले हुए हैं, नई सूरत हाल क्या होगी। हम तो ये देख रहे हैं कि इसराइल के फ़िलिस्तीन के सिलसिले में अरब हुकूमतें जाहिर है कि इसराइल का साथ दे रही, लेकिन अवाम में अब भी फ़िलिस्तीनियों की हमदर्दी पाई जाती है।
देखिए, ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त यह है कि तमाम इस्लामी ममालिक और खुसन अरबों में हुकूमत की तरफ से तो मोर और लेस सभी जो हैं वो इसराइल की दरपर्दा हिमायत कर रहे हैं या खुलेआम हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अवाम कहीं भी जो है वो इसके हामी नहीं है हर जगह। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सूरत हाल यूं ही जारी रही तो इस पूरे मिडल ईस्ट में एक ज़बरदस्त इनकलाब आ सकता है। फिलिस्तीनी तो बहरहाल वो उसी तरीक़े से गोया मुज़ाहमत कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, आप ख़ुद गोया ये गज़ा पट्टी में भी और उधर गर्ब उर्दन के इलाके जो हैं वो उन तमाम जगहों पर, और कोई भी फिलिस्तीनी जो है वो इसराइल से किसी किस्म की साजिश का हामी जो है वो नहीं है। अब वो एकाद जो हैं वो मोहम्मद अब्बास जैसे लोगों को छोड़ के
जी
के, या इससे पहले जो है उन्होंने किसी हद तक यासर अरफात साहब को भी जो है वो अपने चंगुल में ले लिया था और वो जो बदनाम ज़माना कैंप डेविड मुआहदा हुआ
जी,
लेकिन यह कि आखिर में हुआ क्या, फिर इन्हीं लोगों ने उनको जहर दे के मरवा दिया और यही हशर जो है मोहम्मद अब्बास का भी होना है। इसलिए कि आप देखिए हो क्या रहा है कि चंद साल से वहाँ पर वो साहब अमेरिका आता है, मुदाखलत करता है, वो कॉन्फ्रेंस बुलवाता है वहाँ या अमेरिका में या ख़ुद यहाँ, और फिर साहब आखिर में अभी 2-3 महीने पहले जब सबको मालूम है कि साहब वो हुई, लेकिन उसका हशर क्या हुआ। इसराइल जो है वो तो उसकी पॉलिसी यही है कि वो आहिस्ता 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 बढ़ते 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 पूरे इलाके पे काबिज हो जाए, यानी कहीं भी वो जो दो हुकूमत और दो सल्तनत और दो स्टेट जो है वो सब एक ढोंग है
जी।
और लेकिन बदकिस्मती यह है कि सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो बजाय इसके कि यानी जो अपने पैसे अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करके वो इन यहाँ पर इनकी मदद करें फिलिस्तीनियों की, इसलिए कि आखिर में फिर उनके ऊपर भी तो ज़र्ब पड़ेगी
जी जी।
और ये सूरत हाल जो है मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिका के कारखाने के तैयार किए हुए जो दहशतगर्द हैं ये भी अपना पूरा जोर दिखा रहे हैं, भाई इन्होंने सीरिया में देखिए क्या किया और अब लुबनान में क्या करने जा रहे हैं ये
जी।
तो ज़रूरत इस बात की है कि अवाम जो हैं वो जागें जल्द अज जल्द, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो है लोग ज़रूर जागेंगे बहुत जल्द और ये तमाम पूरे इलाके में इनकलाब आएगा और उसके बाद फिर इसराइल जो है वो फिर उसको मज़ा चखना पड़ेगा
इंशाल्लाह। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, इस वक्त के जो हालात हैं जैसा कि ज़ैदी साहब ने इशारा किया एक ख़ास तरह के हालात हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ हमेशा मुस्लिम आवाम में ये जज्बा पाया जाता रहा है कि फ़िलिस्तीनियों की हिमायत की जाए, इसराइल के मजालिम का सिलसिला ख़त्म करवाया जाए, लेकिन आज हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि साजिश दर साजिश हमको नज़र आ रही है। मुस्लिम ममालिक में हम देखते हैं कि सीरिया की जो सूरत हाल है उसमें मुसलमान गिरोह आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई की जो नौीयत है जो सूरत हाल है उससे क़त्ते नज़र हकीकत यह है कि मुसलमान मुसलमान को वहाँ पर कत्ल कर रहा है, मुसलमान मारे जा रहे हैं। बैरूत में हम देख रहे हैं कि साजिशें औज पर हैं, इराक़ में हम देख रहे हैं कि साजिशें औज पर हैं, यमन की सूरत हाल भी इससे कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, ख़ुद मिस्र के दाखिली हालात इस तरह के, ऐसे हालात में गज़ा और इसराइल के दरमियान आपस में जंग का बढ़ना, मैं गज़ा ख़ास तौर पे कह रहा हूँ इसलिए कि महमूद अब्बास की जो इंतज़ामिया है उसके इसराइल से ताल्लुकात इस वक्त भी दोस्ताना है जब वो इसराइल पर हमले कर रहा है, आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल क्या है, सूरत हाल आइंदा की क्या होगी?
नहीं देखिए, ये बात मैं कहना भूल गया कि गज़ा के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसमें महमूद अब्बास की जो फलस्तीनी मुख्तदरा है वो भी उतने ही शरीक है जितने के और दूसरे अरब जो 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 रिजीम्स हैं वो भी उतने ही शरीक हैं जितने के महमूद अब्बास भी शरीक हैं। जब 2008 में जो इसराइल ने जंग की थी उस वक्त इनके कई हजार फौजी मिस्र में बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, जैसे ही गज़ा में हमास की हुकूमत टूटे और ये लोग वहां पहुंचे और इस वक्त भी मिस्र में जो है इस वक्त हजारों इनके फौजी बैठे हुए हैं जो कि महमूद अब्बास के फौजी हैं, कि जैसे ही वहां पर कोई खलफशार पैदा हो, जिसकी इन्होंने बार बार कोशिश भी की लोगों के जरिए मुजाहरात वगैरह करा करके और अंदर अंदर जो है वहां पर गोलियां वगैरह चला करके कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा की कि वहां पर एक खाना जंगी वाली सूरत हाल पैदा हो और इनके फौजी वहां अंदर आए और दूसरी तरफ से इसराइल अंदर आए और हमास का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन हमास ने अपनी बहुत ही हिकमत अमली के साथ इन चीजों को बिल्कुल नाकाम बना रखा है और इस वक्त भी जो वहां की सिक्योरिटी है उसके अंदर इन लोगों को वहां पर खेल करने की इजाजत नहीं है और न ये कर सकते हैं। तो ये कहना कि महमूद अब्बास सिर्फ देख रहे हैं ऐसा दुरुस्त नहीं है, बल्कि महमूद अब्बास जो है और उनकी जो फलस्तीनी मुख्तदरा है जो दरहकीकत एक म्यूनसिपल्टी से ज्यादा हकीकत नहीं रखती है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, वो इसराइली फौजियों को रोक नहीं सकती है, जब जाते हैं वो दंदराते हुए इनके जो दारुसल्तनत रमल्ला है वहां पर घुस आते हैं और लोग पकड़ कर ले आते हैं। और इन्होंने 560 चेक पॉइंट जो है उस इलाके में जो फलस्तीनी मुख्तदरा के इलाके हैं इसराइलियों ने फौजी चेक पॉइंट 560 बना रखे हैं। तो इनके पास दरहकीकत कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रॉड है और ये सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं कि फलस्तीन का मसला एक हद तक हल हो गया है, जबकि फलस्तीन का मसला हल नहीं हुआ है बल्कि मजीद कॉम्प्लिकेट हो चुका है। इसलिए कि मुजाहमत जब हो रही थी जो ओस्लो से पहले उसमें इस बात का इम्कान हो रहा था कि इनको हकीकी एक आज़ादी मिल सकती है, वो उस तरह की आज़ादी जिस तरह के आज गजा के अंदर है, गजा के बाहर तो उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा है लेकिन गजा के अंदर पहली बार 1948 के बाद फलस्तीनी एक इलाके के अंदर चाहे वो छोटा ही सा हो पूरी तरह से खुद मुख्तार है और जो चाहते हैं करते हैं। तो इस तरह के सूरत हाल का इम्कान था कि वेस्ट बैंक में भी पैदा हो, लेकिन ओस्लो अकॉर्ड ने वो चीज खत्म कर दी और इंतहाई गलत तरीके से खत्म कर दी। इन्होंने जो बुनियादी मसाइल थे, सरहद का मसला था, बैतुल मकदिस का मसला था, जो मुकदसी वसाइल थे पानी वगैरह का इसका मसला था, जो रिफ्यूजीज का मसला था, इन सब मसाइल के बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की बल्कि कहा कि अब बाद में होगी। बाद में कैसी होगी, जब एक बार इसराइल को आपने पूरी तरह से ढील दे दी और इसराइल की शर्तों को कबूल कर लिया, उसके बाद इसका कोई इम्कान ही नहीं रह जाता कि वो बाद में कोई भी चीज कंसीड करे। और यही नतीजा है कि 1993 से लेकर आज 2013 में है, 20 साल गुजर चुके हैं, जिस ओस्लो अकॉर्ड के अंदर सिर्फ 5 साल के अंदर सारे मसले को हल होना था, आज 20 साल के बाद वहां पर सिफर के मुताबिक भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। पेशरफ्त अगर हुई है तो वो सिर्फ पीछे की तरफ हुई है, यानी फलस्तीनी मुख्तदरा के जो अख्तियारात उस वक्त हासिल थे आज उससे भी कम हो चुके हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने दोनों तज़्ज़िया निगारों के ख्यालात मुलाहज़ा फरमाए। हम एक बार यही कहेंगे फिर कि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ जिस तरह शुरू से साजिशें हो रही हैं वही साजिशें आज भी हैं और औज पर हैं, और अफसोसनाक पहलू इसका यह है कि इसमें मुस्लिम रियासतें और मुस्लिम हुकूमतें भी बाकायदा पूरी तरह से शरीक हैं इस साजिश में। लेकिन हम जिस तरह माजी में देखते आ रहे हैं कि साजिशों के बावजूद अवाम बेदार रहे हैं, अवाम ने साजिशों का मुकाबला किया है, इस बिना पर हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी फ़िलिस्तीनी अवाम और मुस्लिम अवाम इंशाअल्लाह फ़िलिस्तीनी मसले को उस तरह से हल कराएँगे जो उसका हक है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा।